स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामनि गौरात्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश इस्कान द्वारका दिल्ली में प्रातः श्री चैतन्य चरितामृत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्री चैतन्य चरितामृत भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र और लीलाओं का श्रीपाद कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित तीन विभाग में ये शास्त्र हैं। चैतन्य महाप्रभु के पहले 24 साल तक जन्म लीला से लेके बाल लीलाएं पोंगल लीलाएं और निमाई पंडित की लीलाएं इसको आदि लीला कहते हैं। और 24 साल में जैसे उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद वो 4-5 साल दक्षिण भारत वृंदावन उत्तर भारत में भ्रमण करके प्रचार किया उसको मध्य लीला कहते हैं। और जो आखिरी 18-1 साल श्री जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण के भाव में भावित रहे उसको अंतर्लीला कहते हैं। तो ऐसे तीन विभाग में चैतन्य महाप्रभु की लीला है, आदि लीला मध्य लीला और अंतर्लीला। तो हम अब आदि लीला उसमें भी, और वैसे कविराज गोस्वामी ने पहले 14 श्लोक ही लिखे हैं और उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आज चौथा अध्याय हमारे सत्संग का विषय है, वर्णन करेंगे चौथे अध्याय को। और चौथे अध्याय का जो शीर्ष है वह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अंतरंग कारण। भगवान के अवतार का कोई हेतु होता है, तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाहरंग हेतु तीसरे अध्याय में आए, वो हरिनाम संकीर्तन युग धर्म का प्रचार करना मुख्य हेतु है। और ये चौथे अध्याय में जो श्लोक है जिसकी व्याख्या पूरे अध्याय में की गई है, जो आरंभ में पहले अध्याय में श्लोक है किसी चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण, वो श्लोक ये है। आपको ये श्लोक पहले ध्यान में रखना चाहिए। राधा कृष्णा प्रण्य विकर्ते हलादे निशक्ति अस्मात्। इस श्लोक की व्याख्या में ये पूरा अध्याय है। राधा कृष्ण, राधा क्या है? राधा बोला कृष्ण की प्रणय विकृति। प्रणय कहते हैं प्रेम का वो स्तर जहां भेद न रह जाए प्रेम करने वाले में और प्रेमी में। प्रणय पहले होता है प्रेम, फिर स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय। तो ये प्रेम के ऊपर के स्तर है। प्रणय ऐसा स्तर है जिसमें प्रेमी में और जिससे प्रेम किया जाता है उसमें भेद नहीं रह जाता है। जैसे गोपियां रास लीला में कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण का अभिनय कर रही हैं, तुम डरो मत, चुनरी ऊपर करके कहती है मैं गोवर्धन उठा लिया नीचे आ जाओ, वो कृष्ण का भाव प्रकट कर रही हैं। इसको प्रणय कहते हैं। प्रणय का ये स्तर है। तो श्री कृष्ण के अंदर जब प्रणय का भाव प्रकट हुआ तो उनके अंदर से राधा रानी प्रकट हुई वाम भाग से। तो प्रणय विकृति, विकृति जैसे जैसे भगवान शिव के लिए कहते हैं कि भगवान विष्णु विकृत होकर शिव बनते हैं, जैसे दूध से दही बनता है, तो ऐसे वृषभानु दधि लेके दधि तो दही का है राजा रानी को, वृषभानु दधि जो भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी प्रकट हुई। तो इसका अर्थ यह है कि राधा और कृष्ण एक है, दो नहीं है। श्री प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बोलते राधा एंड कृष्ण इज वन, राधा एंड कृष्ण इज गॉड, आर गॉड नहीं बोलते, राधा एंड कृष्ण इज गॉड, राधा कृष्ण भगवान है। तो ये कौन है राधा रानी जो प्रणय विकृति है, ये कौन है, उसका परिचय क्या है? बोला कृष्ण से राधा रानी प्रकट हुई प्रेम की परिकाष्ठा में। तो उसका स्वरूप क्या है? हलादिनी शक्ति रस्माद, उसको हलादिनी शक्ति कहते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। और फिर कहते ये हलादिनी शक्ति है क्या? एक आत्मा, दोनों में आत्मा एक है, शरीर का भेद है। एक आत्माओ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। देह का भेद है लेकिन आत्मा एक है, देह दो हैं लेकिन आत्मा एक है, एक ही चीज दो में विभाजित हुई है। काय के लिए हुई है? भगवान श्री कृष्ण को रस आस्वादन करने के लिए। तो अकेले कृष्ण एक से दो हुए प्रणय के स्तर में, आत्मा एक है शरीर दो है। फिर अब दूसरी लाइन में कहते चैता चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैकम चैक्यम आप्तम। और अब श्री चैतन्य महाप्रभु जिसको कहते हैं वो प्रकट हुए, वो दो फिर मिलके एक हो गए। जो पहले एक से दो हुए थे रसास्वादन के लिए, फिर वो दो मिलके एक हो गए। सो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में अंतर क्या है? वैसे कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं, लेकिन अंतर एक है कि श्री कृष्ण में परिपूर्ण भक्ति की स्वरूप राधा रानी जोड़ेंगे तब चैतन्य महाप्रभु बनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्लस राधा रानी, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अधिक दयालु है क्योंकि उनके अंदर राधा का भाव है। कृष्ण तो कंडीशन रखते हैं, पहले शरण लो फिर आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं करते, कोई भी है उसको शरण देते। महावदन्य है उसमें राधा महावदन्य है असल में, क्योंकि सारे गुरुओं की शक्ति राधा रानी से आती है और गुरु कृष्ण की कृपा की मूर्ति होते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति गुरु को कहते हैं और वो कृपा राधा रानी की होती है असल में। कृपामयी राधे करुणामयी राधे, तो ये राधा रानी की कृपा है असल में। तो ये चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को मिलके फिर एक हो गए, बोला एक हो गए कृष्ण। पहले तो कृष्ण अकेले थे कृष्ण के भाव में, उनमें से राधा अलग हुई। अब कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु हुए तो राधा भाव द्वितीय स्वललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। अब श्री कृष्ण कृष्ण के भाव में नहीं, राधा के भाव में और राधा के रंग में। द्युति का मतलब रंग, राधा रानी का रंग, राधा रानी का भाव। स्वललितम नवमी का मतलब नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। कृष्ण स्वरूपम है कृष्ण, लेकिन है राधा रानी के भाव में और राधा रानी के रंग में, गोरे रंग में। तो इस श्लोक की व्याख्या में ये पूरा अध्याय है। कविराज गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक की मैं अब व्याख्या करने जा रहा हूं कि अकेला कृष्ण कैसे दो हो गए थे रस आस्वादन के लिए, फिर दोनों एक क्यों हो गए। इसलिए हो गए कि कृष्ण को राधा रानी के प्रेम का पता नहीं लग रहा था, कितना प्रेम कैसे करती है, उसको क्या सुख मिलता है, मेरी क्या सुंदरता है। ये जो तीन कारण है, अंतरंग कारण असल में है, तो वो तो राधा रानी के प्रेम के कारण है। तो अब उस भाव में वो अनुभव करना चाहते हैं, तो राधा का भाव अंगीकार किया। तो ये श्लोक है, ये स्वरूप दामोदर की डायरी में से ये श्लोक लिया गया है। इस श्लोक की व्याख्या में ये पूरा अध्याय है, ठीक है। अब हम जाते हैं आज के श्लोकों के ऊपर। आज के हमारे श्लोक 71 से ना, टू से। अगर 171 को देखेंगे तो वहां लिखा है कृष्ण प्रेम भाविता यहाँ रा चित्तेन्द्रिया काया कृष्ण निज शक्ति राधा कीरड़ा रसहाय। कृष्ण प्रेम भाविता, कृष्ण के प्रेम से भरी हुई है कृष्ण प्रेम भाविता। भाविता हम जिसे कृष्ण भावना कहते हैं, तो कृष्ण के प्रेम की भावना में परिपूर्ण है। यहाँ जिसके यानी राधा रानी के चित्त मतलब मन, इंद्रिय और काया, तो उनके मन में, उनके शरीर में, उनकी इंद्रियों में केवल कृष्ण का भाव ही भरा हुआ है। ये राधा रानी की का परिचय है। कृष्ण निज शक्ति है कौन, कृष्ण की अपनी शक्ति है। राधा कीड़ा रसहाय, भगवान की लीला में कीड़ा मतलब खेलने में सहायक है। अब इसके बाद का आज का श्लोक है ये, इस श्लोक की पुष्टि के लिए कविराज गोस्वामी ने ब्रह्म संहिता से एक श्लोक उद्धृत किया है जो 72 श्लोक है, आप सबको आते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ताभिर्य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवस्त अखिलात्म भूतो गोविंद माधिपुरुषम तमाम भजामि। ये श्लोक यहाँ उद्धृत किया है इस बात को बताने के लिए मैं गोविंद का पूजन यजन करता हूं जो आदि पुरुष है और गोलोक में रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? राधा रानी के साथ रहते हैं। और वो कैसी है राधा रानी? वो आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे अभिन्न है और उसको हलादिनी शक्ति कहते हैं। और जो राधा रानी के संग में होती हैं वो सारी उनकी सखियां हैं और वो सखियां उनके शरीर का विस्तार है। और इसलिए क्योंकि उन्हीं एक के शरीर का विस्तार है इसलिए सारे ही मिलकर कृष्ण को रसास्वादन कराते हैं। तो ये जो शब्द है सभी उसका विस्तार है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए आगे के श्लोक है। अब इसको समझना ऐसे चाहिए, कला भी रूपातय कला भी निज रूपतय कला भी, कला का मतलब उसके और विस्तार, राधा रानी का विस्तार। अब ये पहले सिद्धांत समझ के फिर दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए, कृष्णेर कार्य यैचे रस आस्वादन क्रीड़ा रसाय यैचे सुन विवरण। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्णेर कराय यैचे रस आस्वादन, वो जो राधा रानी है वो श्री कृष्ण को रस आस्वादन कराती है। वो रस आस्वादन करती है क्रीड़ा सहाय और उनकी लीला में सहायक बनती है। और इसके बारे में इसका विस्तार से विवरण अब सुनो, कैसे कराती है भगवान के रस में सहाय। तो उस रस में सहाय का वर्णन है कि अकेली राधा विस्तार करती है अपना। अब ये सिद्धांत पहले समझ लीजिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण का विस्तार होता है बलराम जी के बाद, संकृष्ण के बाद नारायण जो वैकुंठ में विराजते हैं, ऐसे जितने भी अवतार आते हैं इस धरती पे वो विष्णु से आते हैं, सारे अवतार विष्णु से आते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण से के वाम भाग से राधा रानी पहले प्रकट होती है शक्ति के रूप में, सीधे हाथ से बलराम और वाम भाग से राधा रानी, और ये दोनों गुरु के शक्ति का स्रोत हैं। बलराम सीधे हाथ से प्रकट होता है और उल्टे हाथ से राधा रानी, और दोनों कृष्ण की सेवा के लिए, दोनों कृष्ण की सेवा के लिए। और बलराम से फिर सारे अवतार बलराम के बाद आते, और राधा रानी से सारी गोपियां, सारी द्वारका की रानियां और सारी लक्ष्मियां, राधा रानी का विस्तार है। तो एक कृष्ण एक तरफ से विष्णु तत्वों में विस्तार करते हैं और एक तरफ शक्ति तत्वों में विस्तार करते हैं। अब विस्तार के लिए जो टेक्निकल वर्ड है उसका आज यहां थोड़ा वर्णन आएगा। तो अब दूसरे श्लोक में कहते हैं अब ये श्लोक आगे का पढ़ते हैं, कृष्ण कांता गण देखी त्रयी विध प्रकार। कृष्ण कांता का मतलब कृष्ण से प्रेम करने वाले, जैसे कांता कांत कंत कहते हैं पति को, जो पति से प्रेम करती है वो हुई कांता, पति को कहते हैं कंत। तो कृष्ण से प्रेम करने वाले जो हैं वो तीन प्रकार के हैं, त्रिविध प्रकार, उनके तीन इस तरह तीन प्रकार के कृष्ण के प्रेम करने वालों का तीन प्रकार है। एक लक्ष्मी गण, एक तो है लक्ष्मी जो भगवान नारायण के संग वैकुंठ में रहते हैं, और वैकुंठ भी अनंत है, एक नहीं है, वैकुंठ अनंत है, अनंत है। नारायण के चार भुजाओं में चार जो आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उसका बदलने से उनका नाम बदलता है। अगर सीधे हाथ में शंख है ऊपर तो नाम मानो नारायण है, और सीधे हाथ में ऊपर गदा होगी तो वो संकर्षण हो गया, तो प्रद्युम्न हो गया, ऐसे उसका नाम माधव हो गया। तो ऐसे नाम सब बदलते हैं, और ऐसे एक नहीं अनंत वैकुंठ भी बहुत है। वैकुंठ जगत में जितनी लक्ष्मियां हैं, कितनी लक्ष्मियां हैं, कोटि कोटि लक्ष्मियां, एक नहीं बहु अनंत लक्ष्मियां हैं। वैसे जहां भगवान विष्णु जिस लोक में होंगे वहां भी तो लक्ष्मी होगी। तो लक्ष्मियां, इसलिए श्री प्रभुपाद ने एक चिट्ठी में लिखवाया था कि मंदिर में आने वाले यात्री श्रद्धालुओं को प्रेम से प्रसाद खिलाया करो, क्योंकि रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है और लाखों लक्ष्मियां उसकी सेवा में है, इसलिए कभी अभाव नहीं होगा। लाखों लक्ष्मियां उसकी सेवा में है इसलिए अभाव नहीं होगा। तो लक्ष्मियां क्या है, एक है लक्ष्मी गण पूरे, और दूसरे लक्ष्मियां कहां है, वैकुंठ में, अथवा जहां भगवान विष्णु का अवतार होता है तो लक्ष्मी साथ में आती है। और दूसरा श्री कृष्ण के सहायक कौन है, पूरे महेशी गण आर, पूरे का मतलब द्वारकापुरी, महेशी गण का मतलब भगवान की रानियां, जैसे आठ मुख्य रानियां और 16,100 किसके किसके कैद से आजाद कराई थी, बाणासुर के, भोमासुर का दूसरा नाम नरकासुर, उसके कैद में ये सब शहजादियां थी, राजाओं की राजकुमारियां थी, जिसको उन्होंने कैद करके रखा था। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, असल में आदित्य का कुंडल भी चुरा के लाया था और वरुण का छाता भी लेके आया था। तो इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि मेरी माँ के कुंडल वापस ला के दो, तो भगवान सत्यभामा को लेके वहां गए, और उस अरिभु भगवान का अपना पुत्र है ये जो नरकासुर भूमासुर है, ये वाराहदेव का पुत्र है जब भूमि को लाए थे। लेकिन पुत्र भी अगर धर्म के रास्ते से चूक जाए तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते। तो भगवान उनका उद्धार किया, तो ये लड़कियां सब जो फ्री हो गई शहजादी, बोले अब हम जाए कहां, हमारे घर वाले तो हमको स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो उठा के लाया, और कोई समाज में हमको स्वीकार नहीं करेगा। तो उस वक्त तत्कालीन समय में, उस तत्कालीन समाज में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी क्रांति की, का आप लोगों को कोई स्वीकार नहीं करेगा तो मैं आपको स्वीकार करता हूं। समाज के अंदर जो विकृति थी उसको सीधा करने के लिए भगवान ने उन सबको कहा, आप सब द्वार का चलो, मैं आप सबको स्वीकार करता हूं, कोई समाज नहीं करता है तो मैं करता हूं। तो ये असल में है कौन, ये सारी भगवान की कांता है। तो इसको कहते हैं पुरा, पुरे पुरे मतलब द्वारकापुरी, सात पुरियों में एक द्वारकापुरी है, मथुरापुरी है, मायापुरी है, इसको सात पुरियां हैं, अवंतिकापुरी है, ये सब पुरियां कहलाते हैं, ये धार्मिक स्थान है। अब तीसरा कौन है, व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, और तीसरी है ब्रजांगना है, ब्रजांगना है मतलब ब्रज की गोपियां, वो भगवान की जो प्रेमी है उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, सार है। ये सब कहां से आई तीनों, लक्ष्मियां कहां से आई, भगवान की रानियां कहां से आई द्वारका की, और गोपियां कहां से आई, श्री राधिका है ते कांता गणे रविस्तार। इन सब कांताओं का विस्तार राधा रानी से होता है, राधा रानी से इनका विस्तार होता है, ये सब राधा रानी से प्रकट होती हैं। कैसे होती हैं वो आगे आएगा, लेकिन ये राधा रानी से का विस्तार है। तो ये श्लोक का अर्थ क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमिकाओं के तीन विभाग हैं, वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां और ब्रज में गोपियां, और ये तीनों के तीनों राधा रानी का विस्तार है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अब उदाहरण देते हैं। जैसे अवतारी कृष्ण ये छे करे अवतार, जैसे भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार निकलते हैं, वो अवतार ही है, अवतार नहीं है, वो अवतारों का स्रोत है, वहां से सब अवतार निकलते हैं। अंशिनी राधा हैते तीन गणेर विस्तार, ऐसे ही राधा के अंश से इन तीनों का विस्तार होता है, गोपियों का, रानियों का और लक्ष्मियों का विस्तार होता है। तो उदाहरण दिया, जैसे कृष्ण से सारे अवतार होते हैं। अब आगे अब जो लक्ष्मियां हैं वो कैसे विस्तार होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। वैभव गण ये न तहार अंग विभूति, वैभव जैसे भगवान श्री कृष्ण के दसवें अध्याय का नाम क्या है, भगवान के वैभव, भगवान का वैभव, वैभव का मतलब विभूतियां, विभूति का मतलब होता है जिसको देख के भगवान की याद आए, इसको विभूति कहते हैं। तो ऐसे वैभव गण येन तहार अंग विभूति, ये वैभव है लक्ष्मियां, क्योंकि दुनिया के अंदर सबको ज्यादा लक्ष्मी का वैभव सबको पसंद है, लक्ष्मी वैभव की प्रतीक्ष है, लक्ष्मी मतलब वैभव, वैभव का मतलब जिसके पास ऐश्वर्य है, तो उसका नाम ही श्री है, ऐश्वर्य का जो स्वरूप लक्ष्मियां है, वैभव गण मतलब लक्ष्मियां, विभूतियां हैं जो। तार अंग विभूति, वो राधा रानी के दी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, वैभव गण माने लक्ष्मी, पार्शल मैनिफेस्टेशन, वो क्या है, अंग विभूति, वो राधा रानी के अंग की विभूति है, अंग इधर, अंग की विभूति, अंग का मतलब है कि भाई पूरे की पूरी नहीं, लेकिन उसका कुछ भाग उसमें प्रकट होता है, तो अंग की विभूति हो गई। और दूसरे के लिए कहते हैं बिंब प्रतिबिंब रूप महेशी रतती, बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब किसको कहते हैं, बिंब कहते हैं जो अपना आईने के अंदर देखते हैं, ये बिंब, बिंब ना इसको बिंब, हाँ ये प्रतिबिंब, और बिंब क्या है, ऐसे कभी कभी कहते हैं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का, जैसे आईने में हम अपने आप को देखते हैं ऐसे वो बिंब है, हम अपने आप को आईने में देखते हैं ना जैसे, तो राधा रानी श्री कृष्ण का ही अपना बिंब है, तो ऐसे राधा रानी का जो प्रतिबिंब है बिंब का, वो है सब रानियां, द्वारका की रानियां जो है वो अंग, लक्ष्मी अंग का विस्तार है, और वो उसका बिंब प्रतिबिंब है, बिंब प्रतिबिंब से रिफ्लेक्शन ऑफ हर इमेज, रिफ्लेक्शन ऑफ हर इमेज, उनके स्वरूप का प्रतिबिंब है। जैसे हम कहते हैं आपको अपने को आप श्रृंगार करेंगे तो प्रतिबिंब अपने आप सुंदर हो जाएगा, उसको अलग नहीं सुंदर करना पड़ता है। तो लक्ष्मियां जो है अंग का
विस्तार है
और रानियां जो है वो बिंब का प्रतिबिंब है। अब आगे
लक्ष्मी घर तार वैभव विलास अंश रूप,
लक्ष्मी जो है लक्ष्मियां जो है एक नहीं, वैभव विलास अंश, ये दो शब्द आते हैं कृष्ण अवतार में, विलास और प्रकाश। विलास में ऐसे होता है कि अपने से बहुत बनते हैं लेकिन अपने जैसे नहीं होते हैं, अलग रूप होता है उनकी, अलग कांति अलग रूप होता है लेकिन होते उसी के अंदर से निकले हुए। जैसे आप सामान्य समझें कि भाई बने हुए उसी दूध के और चीनी के हैं लेकिन एक रसगुल्ला है, एक पेड़ा है, एक संदेश है, तो उनका शक्लें अलग है लेकिन मसाला एक है। ये जो इसका उदाहरण ऐसा ये है कि मसाले में फेर नहीं है लेकिन शक्लें अलग है, इसको कहते हैं विलास विग्रह। और प्रकाश में क्या, एक जैसे सारे होते। जैसे श्री कृष्ण द्वारका में रहते हुए कृष्ण हैं लेकिन चार हाथ निकाल देते हैं, है तो वही लेकिन हाथ चार निकाल देते हैं, या रासलीला में एक से अनेक हो जाते हैं, तो ये प्रकाश का विग्रह कहलाते हैं कि एक ही चीज एक जैसे बहुत हो गए और अलग अलग प्रकार के बहुत हो गए, तो ये विलास और प्रकाश। इसका भी विभाजन ऐसे है कि एक तो स्वयं रूप भगवान का है और दूसरा है एकत्वेन रूप, तो एकत्वेन रूप के दो विभाग है। ये असल में मैं आने से पहले देख रहा था, ये रूप गोस्वामी के लघु भागवत अमृत के पहले अध्याय में विलास और प्रकाश क्या है इसका वर्णन है, तो मैं देखा क्योंकि ये हमेशा आपस में खिचड़ी बनता है। तो अब यहां क्या है, लक्ष्मी गण तहार वैभव विलास अंश रूप, वैभव विलास अंश रूप, लेकिन है तो राधा रानी की ही शक्ति का अंश, अंश का मतलब उसका विभाग, लेकिन अलग रूप है, रूप वैसा नहीं है, कांति वैसी नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण के साथ आए या सीता राम जी के साथ आए तो ये सारे अलग अलग इनके रूप हो जाते लेकिन है सारे राधा रानी के अंश का विलास। महर्षि गण वैभव प्रकाश स्वरूप, और जो रानियां हैं द्वारका की वो उसके वैभव का प्रकाश है, ये विलास और वो प्रकाश। प्रकाश उसको क्यों कह दिया, कि वो अपना ही बिंब को प्रतिबिंब किया तो वही ऐसे की ऐसे हो गई ना भाई, मेरा जो आईने में दिखेगा मैं जैसा हूं वैसे ही दिखूंगा ना, तो वो हो गए प्रकाश एक जैसे। तो लक्ष्मियां हैं विलास और रानियां हैं प्रकाश, और दोनों क्या है, वैभव का। जैसे सीधा सा लक्ष्मी कहते हैं रुक्मणी को, रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो लक्ष्मी है और सारे और रूप अलग है उनके, लेकिन है सारे राधा रानी का वैभव प्रकाश स्वरूप। गाड़ी ऑफ फॉर्चून और हर प्लेनरी पोर्शन, प्लेनरी पोर्शन का मतलब अंग का विलास, विलास अंश रूप। और रानियां जो है वैभव प्रकाश, एक वैभव विलास एक वैभव प्रकाश। अब आगे आते हैं तीसरा वर्ग, आकार स्वभाव भेदे व्रजे देवी गण, आकार स्वभाव भेदे, उनका रूप अलग है स्वभाव अलग है, भेद है उसमें। व्रज की देवियों में गोपियों में रूप अलग है स्वभाव अलग है। काया व्यू रूप, ये सारे काया व्यू का रूप है, काया मतलब शरीर, जैसे चक्र व्यू बनाते हैं सैनिकों का, ऐसे राधा रानी ने अपनी काया का व्यू बनाया है, एक राधा रानी अनेक हो गई है गोपियां, उसी की काया का ही व्यू है लेकिन उनका स्वभाव अलग है आकार अलग है रूप तहार रसेर कारण, बोला ऐसे क्यों किया है, बोला भगवान को रस आस्वादन कराने के लिए। तो एक ही राधा रानी का जो स्वरूप है, जो काया है, जो शरीर है, वो अनंत गोपियों में व्यूह बन गया है, इतनी गोपियां बन गई जिनका रूप अलग है, भाव अलग है। इसलिए जो राधा रानी के मन में भाव आता है वो सब गोपियों के मन में भाव आता है, क्योंकि एक ही काया है, भाव में कोई अंतर नहीं है उनके। तो ये जो जो भगवान के मन में भाव उठता है वो राधा रानी के मन में उठता है, क्योंकि उनकी आत्मा एक है। और जो राधा रानी के मन में उठता है वो सब गोपियों के मन में उठता है, क्योंकि वो सब मसाला एक है। तो उससे जो बना हुआ जो चीज है वो एक है। हाँ, जुड़े बच्चे में एक हाथ उठाओ तो दूसरे का हाथ अपने आप उठ जाएगा। व्रज देवीज हैव डाइवर्स बॉडी फीचर्स, दे आर हर एक्सपेंशन आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सपेंडिंग रस। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब एक से ज्यादा हो जाना। जैसे एक कंपनी वाले के दुकान, नाम वही के दुकान 50-60 खोल देता है। मार्केट अलग में है, कुछ फर्नीचर अलग हो सकता है, शक्ल अलग है, लेकिन सामान वही रखा हुआ है और कंपनी वही है। तो ये सब इस तरीके से इनका है। अब पहुंच गए 80 वर्ष के ऊपर। अब कहते बहु कांता बिना नहीं रासेरा उलास। जब भगवान को आनंद का उल्लास करना होता है, रास विहार करते हैं, तो बहुत सारे प्रेम करने वाली चाहिए, एक से नहीं होता। बहु कांता, बहुत सी जब तक प्रेम करने वाली नहीं होती हैं, नहीं रसेरा उल्लास, रस में कोई उल्लास नहीं होता है, आनंद नहीं होता है। लीला रस साहे लागी बहुत प्रकाश। इसलिए राधा रानी ने अपने जैसे और बहुत बना दिए कृष्ण को आनंद देने के लिए। ये प्रकाश हो गया, वो विलासता, ये प्रकाश हो गया। अब आज का ये श्लोक जो लिखा हुआ है ये पढ़िए, यही है ना। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के काराए राधिका लीला स्वादे। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण एक कराए राधिका लीला स्वादे। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए राधिका लीला स्वादे। पढ़िए। एक रसा, हाँ, कराए रसादिक, रसादिक लीला स्वादे, राधा ने रसादिक। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण एक कर। तारे मध्य जय राशा भेदे, कृष्ण कराए रस। तारे मध्य व्रज अनारस, माता जी
तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्णा एक कराए रसाधिक लीलास्वादे।
अब यहां कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि गोपियों के अलग अलग भेद हैं। तार मध्य मतलब इन गोपियों में जो राधा का काया व्यू है, जिनके आकार अलग है, भाव अलग है। व्रज नाना भाव रस भेदे, व्रज में उनके नाना नाना भाव माने अलग अलग भाव है और रस का अलग अलग भेद है। इसलिए गोपियों का विभाग में होता है स्वपक्ष गोपियां, विपक्ष गोपियां। स्वपक्ष गोपियां हैं राधा रानी और उसकी सहेलियां, विपक्ष गोपियां हैं चंद्रावली और उसकी सहेलियां। ये तो दो हो गए बड़े पक्ष। इसके बाद तीसरा पक्ष है न्यूट्रल गोपियां, वो तटस्थ है, न इस पक्ष में न उस पक्ष में, वो बीच वाली है, उनका भी नाम है कुछ। और तीसरी है जो है तो स्वपक्ष के पक्ष में, लेकिन दूसरों से भी उनका शत्रुता नहीं है। तो इस प्रकार से पांच एक गोपियों के अलग अलग युद्ध है। इसलिए जब श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन से गोवर्धन महान है और गोवर्धन से राधा कुंड महान है, उसका मुख्य कारण ये है जो ब्रज में रासलीला होती, वृंदावन में रासलीला होती है ना, उसको पंचायती रासलीला कहते हैं। उस रासलीला में सब गोपियां आती, विपक्ष की आती हैं, स्वपक्ष की आती हैं, तटस्थ आती हैं और सुपक्ष की सहयोगी आती है, विपक्ष की सहयोगी आती है, उसमें सारी आती हैं। तो उसको राधा रानी को उसमें अच्छा नहीं लगता कि सबको कहीं सबको क्यों बुला लिया, तो वो कृष्ण को अलग अलग लेके चली जाती। तो इसको बोलते हैं वहां पंचायती रासलीला है। और गोवर्धन के अंदर सुपक्ष की सिर्फ गोपियां होती है, विपक्ष की नहीं आती है वहां, लेकिन वहां गोपगण आते हैं, कभी कभी नंद बाबा आदि आ जाते हैं, वहां तो आ सकते हैं गैया चराते हुए, तो वो विपक्ष नहीं आती है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन राधा कुंड में और कोई नहीं आ सकता है, सखा भी नहीं आ सकता है, सवाए एक दो को छोड़ के जो मधुर्य रस में संदेश ले आते हैं, श्रीधामा है या मधुमंगल है, ये छोड़कर कोई सखा नहीं जाता है, केवल स्वपक्ष की राधा रानी और जिनके कुंड है चारों ओर, ललिता का कुंड है कि ये, वहां केवल कृष्ण के संग स्वपक्षीय गोपियां होती है। तो ये गोपियों के अलग अलग भेद है। किस बात का भेद है? भाव का भेद है। और मुख्य भेद क्या होता है? राधा रानी कहती है कृष्ण मेरा है, ये हो गई स्वपक्षीय गोपियां। और चंद्रावली कहती है हम कृष्ण की है, ये हो गई विपक्ष की गोपियां। तो एक में भगवान हमारे हैं, एक में हम भगवान के हैं। तो ये दो विभाग है इनके, स्वपक्ष और विपक्ष के। और न्यूट्रल है कि ना हम इनके साथ हैं ना हम इनके साथ हैं, हमारा तो भगवान से प्रेम करना है, झगड़ा दोनों से नहीं। ये तो एक दूसरे से झगड़ा करने को आती है ना, वो झगड़ा भगवान को अच्छा लगता है, ये झगड़ा करती है भगवान उसका मजा लेते हैं एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने के लिए। तो पहले है तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, तो इनके रस में भाव अलग है, एक मेरा कृष्ण है मैं कृष्ण की हूं, ये रस में अलग, भाव अलग है। तो इस भाव से गोपियों में अलग अलग पक्ष है। ये काय के लिए पक्षों की जरूरत क्या है, सब साथ एक जैसी क्यों नहीं है? बोला कृष्ण कृष्ण के कृष्ण को, जो कृष्ण के कराए रस अधिक, रस अधिक जो रास लीला का कार्य होता है उसमें ये सब भाव वाली गोपियों की आवश्यकता होती है।
ऐसे जितने भी गोपियों के प्रभुपाद जी के अमंग देम आर वेरियस ग्रुप्स ऑफ कंसर्ट इन ब्रिज, बहुत से उनके पक्ष है, वे वैरायटीज ऑफ सेंटिमेंटल इन मेलोज, उनका अलग अलग भाव है, एक मेरा है कृष्ण, हम कृष्ण के, ये अलग भाव है. दे हेल्प कृष्ण टेस्ट ऑल द स्वीटनेस ऑफ द रास डांस एंड अदर पास टाइम, वो भगवान की रासलीला में और अन्य लीलाओं में सहयोगी होती है, अन्य लीलाओं में सहयोगी होती हैं. और कौन सी लीला है जिनमें सब सहयोगी होती हैं ये गोपियां? राधा कुंड के अंदर नाव क्रीड़ा करते हैं, झूलन यात्रा होती है, ये और लीलाएं गोपियों के संग जो भगवान की हैं, इन लीलाओं में ये सब सहायता करती हैं और उसमें रस को बढ़ाती हैं असल में, और झगड़ा कराता है वो कोई जाके इनको ताकि और रस बढ़े. श्री प्रभुपाद का तात्पर्य है, जैसे पहले कहा गया है कृष्ण और राधा दो नहीं है एक है, इन दोनों में महान कौन है, दोनों में बड़ा कौन है? राधा रानी, माता जी राधा रानी के पालन तरफ की है. हरे कृष्ण. कलकत्ता में जो पहले किसी बहुत बड़े जमींदार का बड़ा घर लिया था मंदिर के लिए, वो जमींदार जो है वो महाप्रभु का भक्त था, तो अच्युतानंद स्वामी को एक दिन बाहर बैठ के कह रहा है, देखो भाई पहले दूध होता है फिर चीनी होती है तब दोनों को मिला के रसगुल्ला बनाते हैं. दबा रहे थे तो देखो राधा महान है, देखो राधा राधा बड़ी है, कृष्ण उसकी माफी मांग रहा है, सेवा कर रहा है. फिर दूसरे चित्र को देखा जिसमें कृष्ण नंद बाबा के खड़ाऊ सर के ऊपर चप्पल उठा के जा रहे थे. प्रभुपाद ने देखो नंद बाबा बड़ा है, कृष्ण उसके चप्पल उठा रहा है. और फिर श्री प्रभुपाद ने कहा भगवान से भगवान का भक्त बड़ा होता है. सीधा उदाहरण दिया कि भगवान से भगवान का भक्त बड़ा होता है. देखो अर्जुन को ऊपर बिठा दिया है और स्वयं नीचे घोड़े हांक रहा है, तो भक्त ऊपर हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और फिर प्रभुपाद जी कहते थे ये जो ज्ञानी मायावादी कहते हैं हम भगवान से मिलके एक हो जाएंगे, इनको एक होने दो, हम भगवान के बाप बनेंगे. हम इनके बाप बनेंगे और क्या, क्योंकि भगवान का बाप भगवान से बड़ा होता है ना, तो भगवान से एक होने की क्या जरूरत है. ये भले एक हो हम इनके बाप बनेंगे. प्रभुपाद का भाव ऐसा होता है कि ये सामान्य बात नहीं. तो अब श्री प्रभुपाद के जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण दो नहीं है एक है, इसलिए कहते हैं एक भगवान का माता का रूप है और एक भगवान का पिता का रूप है, तो भगवान दोनों है माता और पिता. तो भगवान कहते हैं माता अहम अस्य जगतो, मैं जगत का माता हूं, तब राधा रानी का भाव है, और जगत का मैं पिता हूं तो कृष्ण कृष्ण और राधा रानी माता पिता है, तो दोनों एक हैं. पहली बात, जैसे कृष्ण बहुत से अवतारों में अपने आप को विस्तार करते हैं, कौन से जैसे पुरुष अवतार हैं, तीन करुण दक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, ये पुरुष अवतार हैं, फिर लीला अवतार हैं, फिर गुण अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, शक्ति अवेश अवतार हैं, ऐसे अवतारों में जैसे कृष्ण अपने आप को विस्तृत करते हैं, ऐसे ही राधा रानी भी अपने आप को लक्ष्मियों में, द्वारका की रानियों में और ब्रज की गोपियों में विस्तार करती है. तो ये सिद्धांत है. ऐसे राधी रानी राधा रानी के विस्तार जो है वो उनसे निकलते हैं, मोर ऑल दीज वोमनली फॉर्म ऑफ कृष्णा आर एक्सपेंशन करेस्पॉन्डिंग टू हिज प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ विष्णु फॉर्म. ये सारे जो शक्ति स्वरूप हैं, जो स्त्री रूप में विस्तार हैं, कौन अब के ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है. न गोपियां न लक्ष्मी, लक्ष्मियां और न रानियां स्त्रियां हैं, ये तो भगवान का ही विस्तार है. वुमनली फॉर्म ऑफ कृष्ण, ये कृष्ण का जो नारी रूप है, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया. तो मोहिनी मूर्ति का रूप तो लगता है स्त्री का है, लेकिन है तो वही भगवान ना. इस भाव से इसको देखना चाहिए कि ये सारे भगवान का जैसे मोहिनी मूर्ति रूप है, इस प्रकार के रूप है. ये स्त्रियां नहीं है, लड़कियां नहीं है, ये भगवान का विशेष रूप है, करुणा का, दया का, पालन पोषण का. वैसे भगवान विष्णु पालन कैसे करते हैं? लक्ष्मी के द्वारा पालन कराते हैं. तो पालन तो लक्ष्मी करती है असल में सबका. भगवान विष्णु पालन लक्ष्मी के द्वारा करते हैं सबका. तो मां वो है. तो ये भाव यहां दिया गया है. जैसे भगवान श्री कृष्ण के विष्णु अवतार होते हैं, ऐसे राधा रानी के ये सारे विस्तार है, वो भी कृष्ण के ही अवतार है. और इन सारे विस्तारों को कुछ को कहा गया है कि वो उनका प्रतिबिंब है, उनके स्वरूप का प्रतिबिंब है, और कोई अंतर नहीं है. अब प्रतिबिंब है या बिंब है, बस. जैसे भगवान श्री कृष्ण का अपना प्रतिबिंब कृष्ण से अलग नहीं है, ऐसे ये सब राधा रानी का प्रतिबिंब है. जो राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है, तो ये सब कृष्ण से अलग नहीं है. भाई अगर राधा रानी कृष्ण का प्रतिबिंब है, तो कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है. जब दोनों एक है, तो राधा रानी के जितने भी विस्तार है वो भी कृष्ण से अलग नहीं है, तो वो भी कृष्ण का ही विस्तार है. अब सिद्धांत बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार होते हैं, उनको वैभव विलास और वैभव प्रकाश कहते हैं. वैभव विलास में क्या होता है, होते तो सारे ही शक्ति एक जैसी विष्णु की होती है, लेकिन रूप अलग होते, तो आकार अलग होता है. ये हो गया वैभव विलास. और प्रकाश में सब एक जैसे होते हैं, रूप में कोई आकार में फर्क नहीं होता है, लेकिन एक नहीं अनेक होते हैं. तो एक प्रकाश और एक विलास, वैभव का विलास, वैभव का प्रकाश. ऐसे ही राधा रानी का भी वैभव विलास, वो कौन है, तो जो जो लक्ष्मियां है वो वैभव का विलास है, और रानियां है वो वैभव का प्रकाश है. जो लक्ष्मियां हैं वो राधा रानी के वैभव का विलास है, और जो भगवान की रानियां हैं द्वारका में, वो प्रकाश है. प्रकाश और वो विभा, ये अलग विभाजन किया है. और राधा रानी की जो सहेलियां गोपियां हैं ब्रज में, वो तो राधा रानी के शरीर का ही विस्तार है, वो शरीर का विस्तार है. तो एक विलास, एक प्रकाश और एक कायाव्यू, तो तीन शब्द हो गए, विलास, प्रकाश और कायाव्यू. विलास हो गए लक्ष्मियां, प्रकाश हो गई रानियां, और कायाव्यू हो गई गोपी. और ये सारे भगवान के लीलाओं में सहयोगी है. और ये सब कैसे काम करते हैं, राधा रानी के निर्देश में सब काम करते हैं. और जब आध्यात्मिक आनंद होता है, तो उसमें बहुत भिन्नता चाहिए, विभिन्नता चाहिए. और ये सब विभिन्न भावों से राधा रानी के जो कायाव्यू है, ये कृष्ण को आनंद दिलाती है. और ये राधा रानी के संग होती हैं, इनको सखियां या गोपियां कहते हैं.
इसलिए ये सब असल में हिला देनी शक्ति का ही विलास है जो भगवान को रसास्वादन कराता है। और राधा रानी अपने शरीर का विस्तार करके श्री कृष्ण को आनंद का रसास्वादन कराती है। जैसे कोई बहुत कमल का फूल है तो उसके अंदर जो बीच वाला कर्णी का कमल की होती है वो राधा रानी है, बाकी सब पंखड़ियां, एक ये उदाहरण दिया है। और फिर राधा रानी कैसे करती है ये आगे वाले श्लोक में कहा गया है। आगे वाले श्लोक में सीधा ये है, गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस सर्व कांता श्रोमणि। अभी आगे का श्लोक है कि गोविंद, गोविंद का मतलब है जो सबको आनंद दे, उसको आनंद देने वाली गोविंद, जो गायों को आनंद दे, जो पृथ्वी को आनंद दे, जो इंद्रियों को आनंद दे, ये तीन गोविंद के अर्थ मुख्य है। गो धरती को भी कहते हैं, धरती के ऊपर भगवान का अवतार होता है धरती का को सुख देने के लिए, तो गोविंद कहते हैं उसको। भगवान इंद्रियों को सुख देते हैं तो उसको गोविंद कहते हैं, और गायों को सुख देते हैं इसलिए गोविंद कहते हैं। तो गोविंद का कहीं कहीं अर्थ अलग अलग निकलना चाहिए। जब अवतार के समय गोविंद कहते हैं तो पृथ्वी को सुख देने के लिए आते, और जब सुरभि गाय इंद्र का बरसात से रोकते हैं गोविंद, तब गायों को सुख देने का अर्थ हो जाएगा। तो शब्द एक ही होता है लेकिन अर्थ कॉन्टेक्स्ट से अलग हो जाता है। जैसे रासलीला में शब्द अगर लक्ष्मी लिखा है तो उसका अर्थ भी गोपी होगा, क्योंकि प्रसंग अलग है। तो प्रसंग वश यहां अर्थ गोविंद आनंदिनी राधे, तो जो सबको आनंद देते हैं उनको आनंद देने वाली राधे, गोविंद मोहिनी और गोविंद को मोहित करती, गोविंद सर्वस और गोविंद का सब कुछ है, सर्व कांता श्रोमणि, ये जितनी कांता तीन है उनमें से श्रोमणि राधा है। तो इसके बाद आगे राधा रानी के और महिमा का वर्णन है, फिर कृष्ण की महिमा का वर्णन आएगा, कृष्ण कैसे, और फिर दोनों को मिलकर चैतन्य महाप्रभु क्यों ऐसे बने, कि राधा रानी के भाव में क्या क्या चीजों की कृष्ण को अपने में कमी दिखाई दी, उसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने ये स्वरूप गौरंग महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो ये राधा रानी की महिमा से कृष्ण को, राधा रानी के जो गुण हैं जिनसे कृष्ण बहुत वशीभूत होता है, उससे राधा रानी को क्या सुख मिलता है, ये कृष्ण को अभाव महसूस होता है, कृष्ण इस बात का अभाव अनुभव करते हैं, भाई कितना मैं सुंदर हूं, क्यों ये मेरे पीछे आती है, इसको क्या सुख मिलता है, इसका कृष्ण को पता नहीं लगता है। इसलिए वो राधा के स्तर के ऊपर खड़े होके भाव में चैतन्य महाप्रभु और उस रस का आस्वादन करते हैं, हरे कृष्ण। तो आज की कथा यहां विराम देते। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बोलिए। हाँ जी, तो हाँ टॉपिक वाला आपका क्या है? वैभव में प्रकाश में दुख सेम, प्रतिबिंब के कारण वो चीज तो एक ही, क्योंकि उसका ही प्रतिबिंब है। जनरली जो शब्दों का अर्थ ऐसे है, प्रकाश मतलब भाव एक ही है सबका, रानियों का, जैसे गोपियों में अलग अलग भाव है, ऐसे भाव मतलब कोई जो शब्द यहां लिखा है ऐसा, प्रकाश का मतलब एक जैसे भाव वाले, एक कान, वैसे स्वरूप भी एक ही मानते हैं जब कृष्ण का होता है, तो चाहे हाथ चार हो या दो, उदाहरण चार हाथ का दिया है रूप गोस्वामी ने, कि कई बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में दो के बजाय चार हाथ धारण कर लेते हैं, तो वो उनका प्रकाश का प्रकाश कहा जाएगा उसको, वो प्रकाश का उनका दर्शन है। लेकिन ऐसे आप इसका लघु भागवत अमृत को पहले अध्याय में विभा विलास प्रकाश का अंतर क्या है वो साफ दिया है उदाहरणों के साथ।
इसमें जैसे आ रहा है कि ये भगवान की राधा रानी की प्रतिबिंब है, और भागवत में कहीं पर बताया गया कि ये जो है देवताओं की वो अप्सराएं थी, और जैसे वो अष्टावक्र मुनि से उन्होंने वरदान लिया था भगवान की पत्नियां बनी, तो यहाँ पर आ रहा है कि वो
इसलिए सभी भगवान के जो पार्षद परिकर है उनके अंदर कुछ देवताओं का अंश प्रवेश करके उसका रसास्वादन करता है। जैसे यशोदा मैया तो गोलोक धाम में भगवान की मैया है, लेकिन ब्रह्मा जी ने धरा और द्रोण को आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करो, तो द्रोण और धरा नंद और यशोदा में प्रवेश किया और उसके अंदर से रसास्वादन किया। इसलिए जब यदुवंशी वापस कहते जाते हैं कि जो उसमें देवताओं का अंश था वो तो देवलोक चला गया, लेकिन जो भगवान के पार्षद थे वो वापस भगवान के धाम चले गए। जैसे पांडव हैं, अर्जुन के अंदर इंद्र का अंश है, लेकिन अर्जुन तो भगवान का नित्य सखा है, तो इंद्र अर्जुन के अंदर प्रवेश करके भगवान की सेवा का कार्य करके गया। इसलिए जो स्वर्ग गए पांडव, तो अर्जुन तो स्वर्ग नहीं गया, इंद्र का अंश स्वर्ग गया और अर्जुन वापस भगवत धाम गए जहां भगवान का सखा है नित्य। तो ऐसे अष्टावक्र की कृपा से जो आई कन्या है, उन्होंने जो रानियां नित्य भगवान की रुक्मणी सत्यभामा आदि है उसके अंदर प्रवेश करके उनका रसास्वादन किया आशीर्वाद का, लेकिन वो एक नहीं दो है। तो जो 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 इसका इसका उत्तर ये है। आपका क्या प्रश्न? नहीं, ये तो गोपियों के बहुत विभाग है, ऋषि गोपियां हैं, सिंधु नरेश की पुत्रियां गोपियां बनी हैं, मिथिला की कन्याएं गोपियां बनी हैं, और अयोध्या की जो है स्त्रियां गोपियां बनी हैं, वेद की ऋजाएं गोपियां हैं, तो गोपियों के और विभाग बहुत है। हाँ, ऐसे तो उसमें गर्ग संहिता में नृत्यों का बहुत बड़ा वर्णन, तो वो अलग अलग गोपियां, ये गोपियां जो धाम भगवान के धाम से आती हैं उनका वर्णन है। ये जो नित्य सिद्ध भगवान के साथ वो साधना से सिद्ध हो रहे हैं, ये नित्य सिद्ध गोपियां हैं जो भगवान के पार्षद हैं, ये भगवान के संग आए, और दूसरों को सौभाग्य मिला है गोपी भाव का, वो पंचायती गोपियों में आती, वो न्यूट्रल वाले में आएंगे, इन दोनों पक्षों से अलग है, वो भी गोपियां। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।